SBS हिंदी सेवा के सभी सुनने वालों को नई दिल्ली से मनन कुमार का नमस्कार। आइए सुनते हैं भारत के समाचार। हिंसा की बढ़ती घटनाओं के साए और अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी से बदलते हालात के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर का 3 दिवसीय दौरा किया। यह 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 खत्म करने के बाद उनका पहला दौरा है। पहले दिन श्री शाह कथित आतंकवादियों के हाथों मारे गए सेवानिवृत्त पुलिस इंस्पेक्टर परवेज अहमद की पत्नी श्रीमती फरहा अख्तर से मिले और उन्हें संवेदना देने के साथ साथ सरकारी नौकरी के कागजात भी दिए। श्री शाह ने श्रीनगर में यूनिफाइड कमांड के अधिकारियों के साथ सुरक्षा समीक्षा की। गौरतलब है कि मोदी सरकार के दावे के बावजूद कि अनुच्छेद 370 की समाप्ति से घाटी में अमन की बहाली होगी, पिछले दिनों आतंकवाद की घटनाओं में भारी इजाफा हुआ है। आम नागरिकों, खासतौर पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों और प्रवासी मजदूरों की हत्याएं चिंता का सबब बन रही हैं। श्री शाह ने रविवार को जम्मू का दौरा किया। वहां वे कश्मीर में मारे गए 2 अध्यापकों के घर भी गए। उन्होंने जम्मू में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मोदी सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों को सही ठहराया।
मोदी जी ने 30,000 लोगों को चुने हुए प्रतिनिधि बनाने का काम किया है। हर गांव के अंदर पंचायत बनी है, हर तहसील के अंदर तहसील पंचायत बनी है, हर जिले के अंदर जिला पंचायत बनी है। अब ये 3 परिवारों की दादागिरी नहीं चलेगी। मैं बताता हूँ, मेरा पंच सरपंच भी भारत क्या सरकार का मंत्री बन सकता है, जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बन सकता है।
हालांकि उनकी इस यात्रा को लेकर कई राजनीतिक दल चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन जम्मू और कश्मीर के प्रमुख विपक्षी दल PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसे तनावपूर्ण हालात को सामान्य दिखाने की एक कलाबाजी मात्र बताया, जहां असलियत को नकारा जा रहा है। कांग्रेस नेता और जम्मू और कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने मोदी सरकार के दावों को गलत बताया।
After abrogation of Article 370, we were told that the entire, the scenario in Jammu Kashmir will change. The growth and development and hospitals and unemployment will be taken care of. But that has not happened. That does not happen at all. As a matter of fact, we were far better when it was being ruled by various chief ministers. So we are a great loser. We are a great loser after the state has been divided into two, and we are a great loser ever since the assembly has been dissolved.
कांग्रेस पार्टी ने आने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में 40% महिला उम्मीदवारों को टिकट देने के फैसले ने अन्य राजनीतिक दलों के लिए चुनावी घोषणा पत्रों को लेकर चुनौती खड़ी कर दी है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने 40% सीटों पर उम्मीदवारों को खड़ा करने की घोषणा करते हुए नए नारे लड़की हूँ लड़ सकती हूँ से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत की। उन्होंने शनिवार को 5 और प्रतिज्ञाओं की घोषणा करते हुए प्रतिज्ञा रैली को हरी झंडी दिखाई। जवाब में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने छात्रों को नवंबर के आखिरी सप्ताह से स्मार्टफोन और टैबलेट बांटने की घोषणा की।
कि प्रदेश के नौजवानों को हम लोग टैबलेट और स्मार्टफोन उपलब्ध करवाने की कार्रवाई करेंगे कि अगर जिन नौजवानों के पास ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए अपना स्मार्टफोन या फिर टैबलेट नहीं, हम लोगों का प्रयास है कि नवंबर के अंतिम सप्ताह से हम प्रदेश के अंदर उन सभी नौजवानों के लिए सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे और इस क्रम में हम लोग बहुत शीघ्र टैबलेट और स्मार्टफोन के साथ प्रदेश के अंदर नौजवानों को सुविधा उपलब्ध करवाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाने जा रहे हैं।
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के आर्यन खान से संबंधित ड्रग्स के केस में एक नया नाटकीय मोड़ आया है। कॉर्डेलिया क्रूज ड्रग्स मामले में एनसीबी के अहम गवाह किरण गोसावी के बॉडीगार्ड प्रभाकर रोहोजी सईल ने एक वीडियो जारी कर अदालत में हलफनामा दायर किया है, जिससे पूरे केस खासतौर पर मामले की जांच कर रहे एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की भूमिका संदेह के घेरे में आ सकती है। वीडियो हलफनामे के अनुसार श्री सईल, जो खुद भी एनसीबी की ओर से एक अहम गवाह हैं, का कहना है कि उनके मालिक गोसावी ने आर्यन खान को छोड़ने के लिए 18 करोड़ रुपए की मांग की थी और ये मांग गोसावी ने समीर वानखेड़े की ओर से की थी। श्री सईल ने श्री वानखेड़े से अपनी जान के खतरे की भी चिंता जाहिर की है।
त्या गाडीमध्ये एसआरपीची जी मॅनेजर होती ती बसलेली, मग ह्या तिघांमध्ये मीटिंग झाले आणि त्याच्यामध्ये काय झालं ते त्यावेळेला मला कळलं नाही। तर मग गाडीमधून परत त्यांनी फोन केला की 25 बॉन्ड टाक, लास्ट 18 कर, कारण की 8 समीर वानखेडे साहेबांना जाणार आहेत आणि 10 आपल्याला वाटून घ्यायचं। एवढं मी त्यांचं फोनवरचं संभाषण ऐकलं।
एनसीबी ने इन आरोपों को निराधार बताते हुए इनका खंडन किया है। श्री वानखेड़े ने इन आरोपों का उचित जवाब देने की बात कही है। इस नए खुलासे के बाद महाराष्ट्र की राजनीति और भी गर्मा गई है। इस प्रकरण में श्री गोसावी का अचानक गायब हो जाना मामले को और भी रहस्यमय बना रहा है। पुणे पुलिस ने 2018 के एक वसूली मामले में श्री गोसावी के लिए लुकआउट नोटिस भी जारी किया है। और आइए अब सुनते हैं खेल समाचार। संयुक्त अरब अमीरात में खेले जा रहे T20 वर्ल्ड कप में भारत की शुरुआत निराशाजनक रही। रविवार को खेले गए मैच में पाकिस्तान ने भारत को 2 ओवर शेष रहते 10 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। भारत की शुरुआत बेहद ख़राब रही और उसके 3 खिलाड़ी मात्र 31 रन के स्कोर पर पवेलियन लौट गए। शाहीन अफरीदी ने अच्छी स्विंग बॉलिंग करते हुए रोहित शर्मा को पहली ही बॉल पर 0 आउट किया। KL राहुल का विकेट भी अफरीदी ने ही झटका और उन्हें मात्र 3 रन के स्कोर पर आउट कर दिया। कप्तान विराट कोहली और ऋषभ पंत ने संयम दिखाते हुए भारतीय पारी को संभाला। पंत ने 30 गेंदों में 2 छक्कों की मदद से 39 रन बनाए। कोहली रन गति बढ़ाने की कोशिश में 19वें ओवर में आउट हुए। उन्होंने सूझबूझ से बल्लेबाजी करते हुए 49 गेंदों पर 57 रनों का योगदान दिया। भारत 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर केवल 151 रन बना पाया। जवाब में पाकिस्तान ने 18वें ओवर की 1 गेंद शेष रहते बिना कोई विकेट खोए लक्ष्य पार कर लिया। पाकिस्तान के ओपनर मोहम्मद रिजवान ने 3 छक्कों और 6 चौकों की मदद से मात्र 55 गेंदों में 89 रन बनाए, जबकि कप्तान बाबर आजम ने 2 छक्के और 6 चौके मारकर 52 गेंदों में 68 रनों का योगदान दिया। अफरीदी को उनकी बेहतरीन गेंदबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया। उन्होंने 4 ओवर में 31 रन देकर 3 विकेट लिए। चिर प्रतिद्वंदिता होने के बावजूद दोनों टीमों और दर्शकों ने बेहतरीन खेल भावना का परिचय दिया। मैच के बाद कोहली ने बाबर को गले लगाकर बधाई भी दी। एक अन्य मैच में श्रीलंका ने बांग्लादेश को 2 ओवर शेष रहते हुए 5 विकेट से हराया। आज के समाचार यहीं समाप्त करने की अनुमति दीजिए। SBS हिंदी सेवा से आप सबको मनन कुमार का नमस्कार।